आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात लंदन पहुंच रहे हैं। वो बरतानिया के अपने हमनसब के साथ बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल तीसरे दिन भी रखना अंदाजी का माहौल रहा, क्योंकि हिजब इख्तलाफ ने SIR और दीगर मामलात पर मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा। मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में पिछले 10 सालों में 6 गुना इजाफा हुआ। इंतखाबी कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के अमल का आगाज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तंबुल में मुनाकिद होगा। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत के इफ्तिताही बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दो मुल्कों बरतानिया और मालदीव के दौरे के पहले मरहले के तहत लंदन के सफर पर हैं। बरतानिया के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने हम मनसब केयर स्टार्मर से तबादले ख्याल करेंगे और शाह चार्ल्स स्वयं से मुलाकात करेंगे। लंदन में आकाशवाणी के नामा निगार से बात करते हुए भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम कुमार दोरेस्वामी ने कहा कि वजीर आजम का दौरा दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आजाद तिजारत से मुतालिक मुस्तकबिल के एक माहदे पर दस्तखत भी किए जा सकते हैं और इसका दोनों मुल्कों की मईशतों पर मुस्बत असर होगा।
Priority, of course, on both sides is to position the relationship for the next 10 years. What are the next big drivers of the relationship? We have jointly identified trade and investment, technology, education and science and research, defense. We are building a new defense partnership also.
अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 25 और 26 जुलाई को मालदीव का सरकारी दौरा करेंगे। मालदीव के 60वें यौम आजादी के मौके पर सदर मोहम्मद मोइजू की दावत पर वजीर आजम मोदी मालदीव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर मोइजू और दीगर सियासी क्यादत से मुलाकात के मुंतजर हैं, ताकि जामे इक्तिसादी और बहरी सलामती शराकत दारी के मुश्तरका नजरिए पर पेशरफ्त की जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज मुसलसल तीसरे दिन भी रखनाअंदाजी रही, क्योंकि हिजब इख्तलाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा। अपोजिशन पार्टियां बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा कर रही थीं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने से कबल दो मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद जब 2 बजे दोपहर दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और दीगर समेत अपोजिशन पार्टियां ऐवान के वस्त में पहुंच गईं। वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए नारे लगा रही थीं। प्रिजाइडिंग अफसर ने यह कहते हुए ऐवान की कार्रवाई चलने के लिए एहतजाजी अरकान पर जोर दिया कि रियासत गोवा के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की असर नौ तरतीब के बिल 2024 से मुतालिक आज एक अहम बिल पेश किया जाना है। चूंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए चेयर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल जब लोकसभा की कार्रवाई पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद 12 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। शोर शराबे के दौरान नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने खेलकूद के इंतजामिया का कौमी बिल 2025 और एंटी डोपिंग का कौमी तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। प्रेसाइडिंग अफसर ने वक्फे सिफर की कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ओपोजिशन के अरकान ने नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। प्रेसाइडिंग अफसर ने कहा कि हुकूमत ओपोजिशन के जरिए उठाए गए मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। इसी शोर शराबे के दौरान चेयर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुबह में जब ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुसलसल जारी रखनाअंदाजी और ओपोजिशन के जरिए ऐवान के अंदर प्लेकार्ड्स दिखाने पर तश्वीश का इजहार किया।
सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
इसी तरह की सूरत हाल राज्यसभा में भी देखने में आई। ओपोजिशन पार्टियों ने ऐवान में शोर शराबा जारी रखा और बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजर सानी पर बहस का मुतालबा किया। शोर शराबे के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने समंदर के रास्ते अशिया की नकलो हमल के बिल 2025 पर बहस करने और उसे मंजूर करने के लिए पेश किया, लेकिन ओपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की पैदावार और बरामदात में पिछले 10 वर्षों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की पैदावार पिछले माली साल में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की हुई, जबकि ये 2014-15 में 1,90,000 करोड़ रुपए थी। ये 6 गुना इजाफा जाहिर करती है। ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मम्लकत जतिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया की बरामदात पिछले 10 साल में 3,27,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मुल्क के मोबाइल फोन की बरामदात में एक दहाई में 127 गुना इजाफा हुआ है, जो कि 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल फोन की पैदावार 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,45,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वजीर मौसूफ ने इस कामयाबी को पैदावार से मुंसलिक तरबियती स्कीमों से वाबस्ता किया, जिनके नतीजे में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स तैयारी का एक मजबूत इको निज़ाम कायम हुआ है। बड़े पैमाने की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम पहले ही 12,300 करोड़ रुपए का जामे सरमाया हासिल कर चुकी है, जबकि पिछले महीने तक इसमें 1,30,000 से ज्यादा बराह रास्त नौकरियों का इजाफी रोजगार वजह हुआ है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में दो बिल पेश किए। ये बिल हैं खेलकूद के इंतजाम से मुतालिक कौमी बिल 2025 और एंटी डोपिंग कौमी तरमीमी बिल 2025। जनाब मांडविया ने कहा कि खेलकूद के इंतजाम से मुतालिक बिल खेलकूद, खिलाड़ियों के लिए बहबूद के इकदामात और अच्छी हुक्मरानी के बुनियादी आलमगीर उसूलों पर मबनी अखलाकी अवामिल फराहम करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चुनाव कमीशन ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नायब सदर के ओहदे के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से कल जनाब धनखड़ के इस्तीफे को नोटिफाई करने के बाद ये इंतखाबी अमल शुरू किया गया। पीर के रोज जगदीप धनखड़ ने सेहत वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। भारत ने सरहद पार दहशतगर्दी को फरोग देने वाले मुल्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अकवाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से कहा कि कुछ बुनियादी उसूलों का एहतराम करना निहायत जरूरी है। इसमें बैनुल अकवामी अमन सलामती को फरोग देने के लिए दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के जमहूरी और तरक्याती मॉडल के बरक्स मुसलसल कर्जे लेने वाला और इंतहाई कट्टर पसंद मुल्क करार दिया।
इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर व्हिच वाज फोकस्ड मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर ऑन अचीविंग इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अ सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज वाज डायरेक्टली कंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी के बारे में दावों को मुस्तरद करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ये कार्रवाई इसके बुनियादी मकासद हासिल करने और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी गई थी। गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर भारतीय बर्रे सगीर में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से वाबस्ता थे। उनकी ऑनलाइन सरगर्मियों से मुतालिक खुफिया मालूमात और निगरानी पर मबनी एक जामे कार्रवाई के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। आज अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ATS के DIG सुनील जोशी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए ये अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुश्तबा एप्लीकेशंस के जरिए दहशतगर्दी से मुतालिक नजरियात का प्रोपेगंडा कर रहे थे।
10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध उश्केरणीजनक जो साहित्य है वो इनपे बारम्बार शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं।
डीआईजी ने मुत्तला किया कि कसूरवार अफराद पर यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी एसआईआर मुहिम के तहत बिहार में 98% से ज्यादा राय दहिंदगान का इहाता किया जा चुका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि 20 लाख राय दहिंदगान फौत हुए पाए गए, 28 लाख से ज्यादा मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी कर चुके हैं और 7 लाख राय दहिंदगान का इंदराज एक से ज्यादा मकाम पर किया गया है। भारत और नेपाल के दरमियान दाखिला सेक्रेटरी सतह की बातचीत कल नई दिल्ली में हुई। बातचीत में दोनों फरीकों ने बाहमी सलामती तआवुन के तमाम पहलुओं के साथ साथ सरहदी इंतजामिया का जायजा लिया, नीज इसे मजीद मुस्तहकम करने से इतफाक किया। उनकी बातचीत में सरहद के पिलर्स की मरम्मत और देख रेख, सरहद के आर पार मुजरिमाना सरगर्मियों और सरहदी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतालिक मामलात शामिल रहे। उन्होंने मुजरिमाना मामलात में बाहमी कानूनी इमदाद से मुतालिक समझौते के मतन को हतमी शक्ल देने का खैर मकदम किया और नजरसानी शुदा हवालगी के मुआहदे को जल्द पूरा करने के तय काम करने से इतफाक किया। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात ने हल्की से औसत बारिश और गरज चमक की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू डिवीजन में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। रामबन जिले के रामबन बानिहाल सेक्टर में आज शदीद बारिश के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH44 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। तफसील हमारे नामा निगार से।
मौसमियात के महकमे ने कहा है कि राजौरी, पुंछ, रामबन, रियासी, उधमपुर, जम्मू और कठुआ में कल शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने एक एडवाइजरी में खास तौर से खतरे वाले इलाकों में अचानक सैलाब, चट्टानों के टुकड़े गिरने, दरियाओं और झरनों की सतह आब में इजाफे की वार्निंग जारी की है। महकमे ने बारिश के दौरान शहरियों, सफर करने वालों और ओहदेदारान से मुस्तैद रहने को कहा है। ताहम खराब मौसम के सबब आज राजौरी, रियासी और रामबन जिलों में सभी तालीमी इदारे बंद रहे। DDMA से सभी जरूरी एहतियाती इकदाम करने को कहा गया है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दरियाओं और झरनों के करीब न जाएं और किसी हंगामी सूरत हाल पर 112 डायल करें। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
रूस और यूक्रेन के दरमियान नए सिरे से बराह रास्त अमन बातचीत का तीसरा दौर आज तुर्की के इस्तांबुल में होगा। मई और जून में हुई पहली दो दौर की बातचीत भी इस्तांबुल में हुई थी, जिसमें कैदियों के तबादले का फैसला किया गया था, लेकिन जंगबंदी या जामे अमन मुआहदे के सिलसिले में कम पेशरफ्त हुई। रूसी अहदेदारान ने यूक्रेन से फौजी कार्रवाई से खुद को अलहदा करने, फौजी इतिहाद से अलग होने और मकबूजा इलाकों पर रूस के कंट्रोल को तस्लीम करने के अपने मुतालबात को दोहराया है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने इसे मुस्तरद किया है और नेटो और यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप के अपने हक को बरकरार रखने पर जोर दिया है। क्रिकेट में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अब से कुछ देर पहले भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 195 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात लंदन पहुंच रहे हैं। वो बरतानिया के अपने मंसब के साथ बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल तीसरे दिन भी रखनांदाजी का माहौल रहा, क्योंकि हिजबे इख्तलाफ ने SIR और दीगर मामलात पर मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा। मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में पिछले 10 सालों में 6 गुना इजाफा हुआ। इंतखाबी कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के अमल का आगाज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में मुनाकिद होगा। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत के इफ्तिताही बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।